नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 1 अक्टूबर से खरीफ फसलों की खरीद शुरू की जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने फसलों की खरीद के 72 घंटे के अंदर किसानों को भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रेलवे आगामी त्योहारों के दौरान 12,000 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने युवा पीढ़ी के लिए लाइव कंसल्ट इकोनॉमी कार्यक्रम जल्द आयोजित करने की घोषणा की। प्रदेश में भूस्खलन की समस्या के समाधान के लिए एक पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया जाएगा और आगामी त्योहारों को देखते हुए राज्य में मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए राज्यव्यापी विशेष अभियान शुरू। समाचारों के साथ मैं आशुतोष सुनियाल और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 1 अक्टूबर से खरीफ फसलों की खरीद शुरू की जाएगी। देहरादून में आयोजित बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने फसलों के खरीद के 72 घंटे के अंदर किसानों को भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्रीमती आर्या ने कहा कि सरकार ने धान और मंडुआ खरीद के लिए 600 करोड़ का बजट आवंटित किया है। उन्होंने बताया कि इस साल प्रदेश में धान खरीद का लक्ष्य 7.5 लाख मीट्रिक टन और मंडुआ खरीद का लक्ष्य 5,000 मीट्रिक टन तय किया गया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,369 रुपये प्रति क्विंटल और मंडुआ का 4,886 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि यात्रियों की सुविधा के लिए दीपावली और छठ पर्व के दौरान 12,000 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि ये विशेष रेलगाड़ियां 1 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच चलेंगी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष दिवाली और छठ पर्व के दौरान 7,750 विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई थी। उन्होंने कहा कि रेलवे के 29 मंडलों में 90% गाड़ियां समय से चल रही हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड को प्रोत्साहन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि अब भारत ने फिल्म इंडस्ट्री में प्रयोग होने वाले सभी इक्विपमेंट्स को देश में ही बनाने का लक्ष्य तय किया है, जिससे फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। श्री वैष्णव ने यह भी घोषणा की कि युवा पीढ़ी के लिए एक बड़ा लाइव कंसल्ट इकोनॉमी कार्यक्रम जल्द आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने राज्यों के बीच मॉडल स्टेट सिनेमा रेगुलेशन रूल्स निर्धारित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत अल्मोड़ा जिले के रैमजे इंटर कॉलेज में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में दूर दूर से आए लोगों ने विभिन्न स्वास्थ्य जांचें करवाई और निशुल्क दवाइयां प्राप्त की। शिविर में विशेषज्ञ आयुर्वेद चिकित्सकों ने आयुर्वेद की विभिन्न विधियों जैसे ECG जांच, नाड़ी तरंगिनी, मर्म चिकित्सा, न्यूरोथेरेपी आदि से रोगियों का उपचार किया।
इसमें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में हमने ये कैंप किया है, बहुत मेगा इवेंट। हमने यहाँ पर 6 ब्लॉक से 18 डॉक्टर्स की और 10 स्पेशलिटी की टीम बुलाई है, जिसमें हमारे स्त्री रोग विशेषज्ञ और हमारे गुदा रोग विशेषज्ञ, त्वक विशेषज्ञ, हमारे एनोरेक्टल में विशेषज्ञ, हमारे मस्कुलर स्केलेटल, रीढ़, स्पाइन की जितनी भी प्रॉब्लम है वो स्त्री रोग विशेषज्ञ। हम डिजिटल तरीके से भी आयुर्वेद को एडवांस कर रहे हैं।
इस दौरान जिला आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद शाहिद ने सभी लोगों से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से स्वास्थ्य लाभ लेने का आह्वान किया।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है।
राज्य में भूस्खलन की समस्या के समाधान के लिए एक पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया जाएगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कल वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान और अन्य राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के साथ भूस्खलन न्यूनीकरण के संबंध में आयोजित बैठक में पूर्वानुमान मॉडल विकसित करने पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि एक ऐसी व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है जो उपग्रह चित्रों और सतही परीक्षणों के आधार पर किसी विशेष स्थान पर भूस्खलन की संभावना का पूर्वानुमान लगा सके, ताकि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। बैठक के दौरान श्री वर्धन ने वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान को राज्य की 13 ग्लेशियर झीलों में सेंसर लगाने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने इन संवेदनशील झीलों की संवेदनशीलता को कम करने के प्रयासों का भी आग्रह किया। आगामी त्योहारों को देखते हुए राज्य में मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए राज्यव्यापी विशेष अभियान शुरू किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देशों पर यह अभियान सभी जिलों में एक साथ चलाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निदेशक डॉ आर राजेश कुमार ने बताया कि दूध और दुग्ध उत्पादों, खाद्य तेल, घी, मिठाइयों, मसालों, आटा, मैदा, बेसन और सूखे मेवों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। निर्माण इकाइयों, थोक विक्रेताओं और परिवहन माध्यमों से नमूने एकत्र कर सरकारी प्रयोगशालाओं में परीक्षण किए जाएंगे। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को नियमित छापेमारी करने और संदिग्ध खाद्य पदार्थों के नमूने प्रयोगशालाओं में भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने मिलावट पाए जाने पर तत्काल कानूनी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। टिहरी की जिला पंचायत अध्यक्ष इशिता सजवान की अध्यक्षता में जिला पंचायत सदस्यों ने जिले में आपदा पुनर्निर्माण, कानून व्यवस्था, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, सड़क समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया। इस दौरान सदस्यों ने जिले में आपदा के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों और पेयजल लाइनों की मरम्मत और लोगों को तत्काल मुआवजा देने की मांग की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि सभी विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।
कई तरह के मुद्दे उठाए गए हैं सदस्यों द्वारा, कई तरह के प्रस्ताव आए गए हैं और अभी हमारे जिले में आपदा के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है, तो हमारी जो प्रायोरिटी है वो ये सारे जो नुकसान हुए हैं उन सब का समाधान करना होगा और जो भी अन्य विषय उठाए गए हैं सदस्यों द्वारा हमारी प्रायोरिटी रहेगी, हमारा फोकस रहेगा उन सारी समस्याओं का समाधान।
बागेश्वर जिले के वजूला स्थित अटल उत्कृष्ट पदम सिंह परिहार राजकीय इंटर कॉलेज में 4 दिवसीय आपदा प्रबंधन एवं प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए युवाओं को आपदा प्रबंधन के कौशल सिखाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं न केवल छात्रों को जागरूक बनाती हैं बल्कि उनके गांव तथा समाज में भी जागरूकता फैलाने में मदद करती हैं।
आज के इंटर कॉलेज बजूला में रेडक्रॉस सोसाइटी के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है जिसमें स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारी दी जा रही है। साथ ही साथ फर्स्ट मेडिकल रिस्पॉन्डेंट्स के रूप में वो कार्य करेंगे, फर्स्ट एड के रूप में भी वो कार्य करने में सक्षम होंगे प्रदाता के रूप में, तो उसके लिए भी ट्रेनिंग का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है जिसमें SSB के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं। साथ ही साथ SDRF और जो हमारी फायर की टीम है वो उनके द्वारा भी यहाँ पे ट्रेनिंग का कार्यक्रम दिया रखा गया है, तो ये काफ़ी अच्छा कार्यक्रम है। इससे स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं और इसी प्रकार के कार्यक्रम जनपद के अन्य स्कूलों में भी रखने का हम लोगों का प्लानिंग।
और अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय लिखित भर्ती परीक्षा प्रकरण पर दैनिक जागरण का शीर्षक है, खालिद गिरफ्तार, साबिया सलाखों के पीछे। इस खबर पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी खालिद गिरफ्तार। बेसिक और जूनियर स्तर के शिक्षकों के लिए TET मुद्दे पर हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, TET पर कोर्ट जाएगी सरकार। जबकि अमर उजाला का शीर्षक है, प्रदेश के 18,000 शिक्षकों के बड़ी राहत, TET की अनिवार्यता पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 1 अक्टूबर से खरीफ फसलों की खरीद शुरू की जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखारिया ने फसलों की खरीद के 72 घंटे के अंदर किसानों को भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रेलवे आगामी त्योहारों के दौरान 12,000 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने युवा पीढ़ी के लिए लाइव कंसल्ट इकोनॉमी कार्यक्रम जल्द आयोजित करने की घोषणा की। प्रदेश में भूस्खलन की समस्या के समाधान के लिए एक पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया जाएगा और आगामी त्योहारों को देखते हुए राज्य में मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए राज्यव्यापी विशेष अभियान शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।